प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज यह इस पत्री का अंतिम अध्ययन होगा। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं आपको पिछले अध्ययन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। हमने देखा था पत्रस का व्यक्तिगत अनुभव है कि हमें अपने आप को विश्वास योग्य सृजनहार परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर हमारी धरोहर की रखवाली प्रभु के दिन तक करेगा और वह कलीसिया के अगुओं से आग्रह करता है कि वे दबाव में आकर नहीं परंतु सच्चे मन से प्रभु की सेवा करें जिसमें नीच कमाई की लालसा ना हो। हमें अन्यों पर अधिकार जताने की अपेक्षा आदर्श बनना है कि प्रभु यीशु के प्रकट होने पर हम सब मुकुट पाएं। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से पिछले अध्ययन के कुछ बातों को दोहराना चाहता हूं। 5 अध्याय में हम देख रहे थे प्रभु यीशु के कष्ट और पुनः आगमन। पत्रस की पहली पत्री के इस अंतिम अध्याय में हम प्रभु यीशु के कष्टों और उसके पुनः आगमन पर प्रकाश डाल रहे हैं, अर्थात इसमें डाला गया है प्रभु यीशु के पुनः आगमन से हमारा क्या संबंध है। हम में से हर एक का मसीही जीवन प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों से आरंभ होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। परंतु परमेश्वर की संतान के जीवन में आज भी कष्ट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कुशाग्र व्यक्तित्व देकर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है कि हमें काम में ले। मैंने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है, पद 1 से 4 जिसमें कष्टों से सेवा और आशा के उत्पन्न होने की चर्चा की गई है, और पद 5 से 14 में जिसमें कष्टों द्वारा दीनता और धीरज की चर्चा की गई है। यहाँ प्रभु यीशु के कष्ट और आज पवित्र जनों के कष्ट तथा प्रभु यीशु का पुनः आगमन की चर्चा की गई है। प्रत्येक विश्वासी की योजना और कार्य सूची में प्रभु यीशु के पुनः आगमन का विचार समाहित होना चाहिए। हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारे पाए हुए जीवन की योजना बना होना चाहिए। क्या मसीह का पुनः आगमन, जब वह आकर आपको उठा ले जाएगा और आपको लेकर फिर पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा, तो आपकी भावी योजना में क्या यह सब कुछ समाहित है, या यह एक अंतरिक्ष में तैरती आशा है जिसका आपके व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है? मेरे प्रियो, प्रभु का पुनः आगमन एक सिद्धांत ही नहीं है, यह हमारे जीवन की भीतरी सच्चाई है। यह एक ज्ञान या विश्वास की बात नहीं है, यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन की सच्चाई है। मैं एक दिन इसे अवश्य देखूंगा, इस दिन को देखूंगा, मैं उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति में होऊंगा। यह सच्ची आशीष का कैसा अनुपम अवसर होगा। पत्रस कहता है कि हमारे कष्ट इसी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम देखें, कष्टों से सेवा और आशा उत्पन्न होती है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 1 पद में हमने पढ़ा था, लिखा हुआ है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यद्यपि पत्रस अपने अधिकार प्रकट करता है, परंतु वह अपने आप को प्रेरित भी नहीं कहता है। वह कहता है कि वह एक प्राचीन है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां कुछ प्राचीन भी थे। यूनानी भाषा का यह शब्द कभी कभी वृद्ध मनुष्यों के लिए काम में लिया जाता था। यूनानी भाषा में बिशप शब्द का अर्थ है चरवाहा। पत्रस अपने आप को सहवृद्ध कहता है, उसने अपने भाइयों में बड़ा कभी नहीं कहा। वह अपने विचार को उनका संगी वृद्ध कहकर आग्रह करता है। यहां पर हम देखते हैं मसीह के दुखों का गवाह। पत्रस का स्थान अद्वितीय था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के कष्टों को अपनी आंखों से देखा था। कहता है प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी। पत्रस ने महिमा को भी देखा था, अतः वह महिमा को रूपांतरण की घटना से जोड़कर देख सकता था। उसने प्रभु को कलवरी पर प्राण देते हुए भी देखा था। मेरे मित्रों, हो सकता है कि यह पर्वत हर्मन पर्वत था, परंतु यहां भौगोलिक स्थिति का कोई भी महत्व नहीं है। महत्व है तो वहां की घटना का। पत्रस कहता है कि वह उसका गवाह है। भावी महिमा तो उससे भी अधिक होगी, जो होने वाली और आने वाली महिमा है। तब पत्रस कहता है 5 अध्याय के 2 पद में कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर कर। पत्रस इस तथ्य पर बल देता है कि बिशप का पद संभालने वाला अपने झुंड का चरवाहा हो। चरवाहा होने का अर्थ है प्रबंध करना, सुरक्षा प्रदान करना, संचालन करना, अनुशासन बनाना, निर्देश देना और अगुवाई करना। अतः प्राचीन की सेवा अत्यधिक निश्चित हो, जिसमें संदेह का स्थान ना हो। परंतु पत्रस एक नकारात्मक निर्देश भी देता है। सबसे पहले पत्रस कहता है कि प्राचीन सही कारण के निमित्त सेवा करें, उनकी मनोदशा भी उचित हो, बाध्य होकर नहीं परंतु स्वेच्छा से सेवा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि वह कहता है परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करें, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर को अनचाहे मन की सेवा पसंद नहीं है। कोई नहीं है तो मैं कर देता हूं, ऐसा कहना गलत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं की जाती है। ऐसा कभी आप ना करें। यदि आप दबाव में आकर सेवा करें तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। पत्रस कहता है कि सेवा का कारण ही उचित ना हो तो हमारी मनोदशा भी उचित नहीं हो सकती है, क्योंकि सेवा स्वेच्छा से की जाती है, परंतु सेवा की प्रेरणा भी उचित होना चाहिए। आपकी लालसा भौतिक लाभ की ना हो परंतु मन लगाकर हो, प्राचीन सेवा से संतुष्ट हो, न कि उससे मिलने वाले लाभ से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। दूसरे शब्दों में प्राचीन उचित रूप से सेवा करे, वह भेड़ों को हांकने की अपेक्षा उनकी अगुवाई करे, अधिकार जताने की अपेक्षा उनके लिए आदर्श बने। मेरे विचार में अगुवे को कलीसिया से प्रचार मंच पर खड़े होकर कलीसिया को वह सब करने का उपदेश देने का अधिकार नहीं है जो वह स्वयं नहीं करता है। मैंने अपनी सेवकाई में देखा है कि कलीसिया को वहां दान देने की प्रेरणा नहीं दी गई है, और जहां कहीं मैं दान की बातें करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं। हमें लोगों से वह काम करने का आग्रह नहीं करना है जो हम स्वयं नहीं करते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्राचीन को इस बोध के साथ सेवा करना चाहिए कि वह प्रधान चरवाहे प्रभु यीशु की सेवा कर रहा है और उसके प्रकट होने पर उससे अनंत प्रतिफल पाएगा। आपके मन में यह विचार कभी ना आए कि हम निरुद्देश्य सेवा कर रहे हैं। पौलुस स्पष्ट कहता है कि हमारी सेवा निष्फल नहीं है, हम प्रभु यीशु के साथ सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इसका प्रतिफल पाएंगे। हमारी सेवा की प्रेरणा यही हो। यहां पर लिखा है, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में अनेक मुकुटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जीवन का मुकुट और धार्मिकता का मुकुट भी है। महिमा का मुकुट क्या है? मेरे विचार में एक दिन हम उसकी महिमा के सहभागी होंगे। मैंने अपने अध्ययन में देखा है कि पुराने नियम में महिमा के अनेक शब्द हैं। आज आप महिमा शब्द से क्या अर्थ निकालते हैं? महिमा कितनी बड़ी है? उसका आकार क्या है? उसका रंग क्या है? मेरे विचार में एक सामान्य विश्वासी के मन में महिमा का विचार बड़ा ही धुंधला सा होगा। मैंने देखा है कि महिमा का ना तो आकार है न ही परिभाषा। वचन से सुने, भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश का परिमाप अनिश्चित है, वह अति विशाल है। यह हमारे परमेश्वर की महिमा है। महिमा का रंग क्या है? इस विशाल ब्रह्मांड को रात में आप देखें, बसंत ऋतु में पत्तों और फूलों को देखें, यह परमेश्वर की महिमा है। मेरा एक मित्र फूल उगाता है। वह कहता है कि वह बसंत ऋतु में बीज डालता है और वे उगकर ऐसा सुंदर फूल देते हैं। इसके उपरांत भी मनुष्य कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, महिमा का रंग भी है। परमेश्वर की महिमा अद्भुत है और हम एक दिन उसके सहभागी होंगे। वह उसे महिमा का मुकुट कहता है। पत्रस प्रभु को प्रधान चरवाहा भी कहता है। भजन 22 में व्यक्त किया गया है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। महान चरवाहा अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। भजन संहिता 23:24 में वह प्रधान चरवाहा है जो एक दिन फिर से आएगा तथा अपने भेड़ों को साथ रखेगा। हम उसके भेड़ों की झुंड में होंगे। यह कैसी महान बात है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कष्ट दीनता और धीरज उत्पन्न करते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कहता है, हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। यह हमारे युग में विपरीत हो गया है। आज प्राचीन को युवकों के अधीन होना पड़ता है। आज का युग युवकों का है। युवक आवाज उठाते हैं, वे व्यवस्था को पलट देना चाहते हैं, तथापि एक विश्वासी युवक को वचन पर ध्यान देना है। लिखा है, हे नव युवकों, प्राचीनों के अधीन रहो। अंततः आपके पिता में और विशेष करके परमेश्वर का भय मानने वाले पिता में आपसे कहीं अधिक बुद्धि है। मेरा एक मित्र कहता है, मैं कॉलेज के दिनों में अपने पिता से लजाता था, जबकि उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी और वह बहुत पैसा कमाता था, क्योंकि वह पुराने विचारों का था। कॉलेज के बाद मैं नौकरी करने लगा और कई वर्ष उससे भेंट नहीं की। जब मैंने उससे भेंट की तो मैं चकित रह गया, यह देखकर कि 6 वर्षों में उसने कितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। युवक प्रायः जीवन की भार सहने के बाद समझ पाते हैं कि उनके पिता का अनुभव कैसा महान है। लिखा है, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो, अर्थात विश्वासी दूसरे विश्वासी पर अपने विचार न थोपे। यहां पर हम देखते हैं दीनता से, हमें दीन बनना है, यही यहां पर दर्शाया गया है। तब हम देखते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पत्रस दीनता और अनुग्रह की बात बहुत चर्चा करता है। घमंडी को लेकर परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है, घमंडी को परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। हम दीन बनकर ही परमेश्वर के अनुग्रह का बोध कर पाते हैं। लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु यीशु के आगमन के ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की संतान का स्वभाव दीनता का होना है। प्रभु यीशु ही है जो आने के बाद न्याय स्थापित करेगा और सब बातों को ठीक करेगा। आप इस संसार को नहीं सुधार सकते, आप केवल सोच सकते हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वह कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, अर्थात वह आपको महत्वपूर्ण मानता है। पत्रस चिंता करने के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु कहता है, बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसे अपने पाप का बोझ दे दो, वह आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा। आप उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आए, वह उनका निवारण करेगा। जी हां, अपनी चिंताएं उसी पर आप डाल दें। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, किसी बात की चिंता मत करो, सब बातों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु के पास प्रार्थना में अपने मन के बोझ को ले आएं और वहां छोड़ दें, उन पर फिर आप ध्यान ना दें और आप शांति पाएंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां लिखा है सचेत, शब्द वही शब्द नहीं है जो पत्रस 4 अध्याय के 7 पद में काम में लेता है। यहां इस शब्द का अर्थ है सतर्क रहना। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है और वह इस खोज में रहता है कि किसको कब फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हमें शैतान का सामना करने के लिए कहा गया है। वह इस संसार में खुला घूम रहा है। पहला पत्रस 5 उसके 9 में लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होकर, यहां चित्रण यह है कि एक सेना दूसरे बैरी सेना के सामने खड़ी है। हमें अन्य विश्वासियों के साथ खड़े होना है। मेरे विचार में हम अपनी शक्ति में शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के हथियार तो बांधने हैं, परंतु अन्य विश्वासियों का साथ भी चाहिए। यही कारण है कि मैं अपनी आवश्यकताओं को अपने रेडियो श्रोताओं के सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। पहला पत्रस 5 के 10 पद में आगे लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अर्थात मसीह यीशु के बिना हमारी महिमा नहीं है। कलीसिया एक चांद के समान है जो सूर्य के प्रकाश को फैलाता है। हमारी महिमा प्रभु की महिमा का फैलाना है, परंतु हम मसीह में उसके सहभागी भी हैं। लिखा है, तुम्हारे थोड़े देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, अर्थात आपको परिपूर्णता प्रदान करेगा। लुकरची सुसमाचार 22 अध्याय के 32 पद में प्रभु ईश्वर ने पत्रस से कहा था कि वह भाइयों को बल प्रदान करे। स्थिर करने का अर्थ है पुनरुद्वार करना। पहला पत्रस 5 के 11 में लिखा है, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मेरे प्रियो, यह आशीर्वाद है। पत्रस उत्तरोक्ति भी जोड़ता है। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5 उसके 12 पद में लिखा है, मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है। यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। सिल्वानुस ने पत्रस के लिए यह लिखा था, अतः भूल चूक का दोष पत्रस को आप ना दें। पहला पत्रस 5 के 13 पद में लिखा हुआ है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेबीलोन रोम का प्रतीक है, परंतु मैं मानता हूं कि बेबीलोन बेबीलोन ही है। पत्रस के लिए प्रतीकों का प्रयोग असामान्य है। कहता है, मेरा पुत्र मरकुस। मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक। वह पत्रस का आत्मिक पुत्र था। पौलुस उसे अपनी दूसरी प्रचार यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, परंतु आगे चलकर मरकुस निर्भीक और साहसी हो गया था। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 14 अध्याय, जो इस पत्री और इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यहां पर कहता है, प्रभु के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। किसी ने कहा है, युवती को चूमना आशावादी है, विवाहित स्त्री को चूमना विश्वास दिलाता है, और वृद्ध महिला को चूमना दया है। हमारे संस्कार में अभिवादन हेतु हाथों का मिलाना ही पर्याप्त है। पत्रस का अंतिम आशीर्वाद है, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। मेरा भी आप सब श्रोताओं के लिए यही आशीर्वाद है कि तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक के साथ अध्ययन को आरंभ करेंगे। आप उस अध्ययन में अवश्य शामिल हो और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया। तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई।